أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم clarify, I think I discussed yesterday, and yesterday I told you we were discussing about the age when a girl become baligh, and I told you that at the end of ninth year and the starting of the 10th year, the bulugh of the girl is there, and now she is responsible to perform all the salat and all the wujub wajib which are there in the Sharia of Islam. Just want to clarify that in our daily life, when you use this word, it means that if I ask you that, if I tell you that what is the age when a girl becomes baligh, I should tell you that at the age of 9 years, she will become baligh. It means that how you identify the age is like this: at the when you celebrate the ninth birthday of your daughter, she will become baligh. But be careful that when I say that ninth birthday, it means that birthday according to the lunar calendar, not the solar calendar. There is a difference of almost 10 to 11 days in every year. So in 9 years it will be around 100 days, which will be difference between the lunar year and solar year. So around 100 days before the ninth birthday of your daughter, she will become baligh, and now she is a mature woman lady, and all the responsibilities are there on her shoulder, and she has to perform all the wajibat which is there in the Sharia of Islam. Secondly, for the today's question, that if a doctor say to you that you are not right now, it's not good for you for your health to have fast today, what is your responsibility? Can you break your fast or still you have to fast? What is your responsibility right now? So a doctor recommend that you should not have fast today. What is your responsibility during the holy month of Ramadan? Can break, Hasnain. Any other? No more also? So I know, Alhamdulillah. Just want to clarify that, Alhamdulillah, both answers were almost good. Just want to clarify that those things. That first of all, who is the decision maker here? Either the doctor or you, yourself. So you will decide that right, today the fast is harmful for you or somebody else. The Sharia Islam says that you are responsible and you are the decision maker here, not the doctor. Definitely the doctor's view or the arguments presented by the doctor help you to reach the decision, but the decision maker are you. So suppose that the doctor say it's harmful, but you feel yourself that no, the fast is not harmful for me, then it's wajib on you to have fast today. On the other hand, for example, doctor say that no, it's, you can have fast today, you can fast today, but you feel yourself that it is not possible for you, it's harmful for you, for yourself, your health, you cannot fast, then it's okay. It's haram for you to fast on that day. So you are the decision maker, first of all. Secondly, is it necessary for me to reach the yaqeen that today, for example, the fast is harmful for you, or just a fear that, okay, I have a fear that maybe there is a possibility that if I fast today, it will be harmful for you. Sharia said that it's not wajib on you to reach the yaqeen. Just having a fear that the fast is harmful for you is enough. Now it's not necessary for you to fast on that day. But the last thing is that how I reach that fear. Just randomly, suppose I woke up in the morning and I say, oh, today I'm so tired, and if I fast today, I will become weak or ill or something that is harmful for me today. No, it's not like this. You should have a rational reason for that. Okay? So if I summarize that, you are the decision maker. You have to decide that today the fast is harmful for you or no. Secondly, that decision is not you should reach a yakin, or you should be 100% sure that it is harmful for you. Just having a fear that the fast is harmful for you is enough for you to break the fast. And the last but not the least is that this reaching of fear, reaching of that state that you feel a fear in yourself, it should have some rational argument behind it, not just a random argument is not enough for that. So if this is the case and you feel that fast is harmful for you, in that case, you can it's not necessary or it's haram for you to have fast on that day. Please recite a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Recite a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. If anybody of you understand that, can you repeat it? And can you say that what you understand from this? Okay, so I am the decision maker, and when I can decide that if I have to reach a yakin, or suppose that I have a fear, just a possibility is there that it is harmful for me. Yeah, you should have a rational argument, but it's not necessary that you reach the yakin or itminan. Just having a fear that the fast is harmful for you is enough that you should not take the fast today. Okay, recite a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Aima alayhi salam ki duaon ke hawale se hum kuch jumlat ki tilawat kar rahe the, usko samajhne ki koshish kar rahe the. ماہ مبارک کی رمضان کی دعاؤں اور دیگر دعاؤں کے اندر, چاہے آپ دعائے کمیل کی تلاوت کریں, چاہے آپ مناجات شعبانیہ کی تلاوت کریں, دعاؤں کے اندر ایک نقطہ ہمیں بار بار تکرار ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اور یہ احساس ائمہ علیہ السلام ہمارے اندر بلڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ احساس یہ ہے, انسان کو, مومن کو ہمیشہ خوف اور رجا کے درمیان رہنا چاہیے. نہ اتنا زیادہ فیئرفل انسان ہو جائے, نہ اتنا زیادہ خوف زدہ ہو جائے کہ مایوس ہو جائے اپنے نجات سے. وہ یہ کہے کہ میں اتنا گناہگار ہوں, میں اتنا پست ہوں کہ اب میری نجات کی کوئی امید نہیں ہے. نہیں, نہ اتنا مایوس ہونا چاہیے, نہ اتنا خوف کے عالم میں انسان کو ہونا چاہیے, اور دوسری طرف نہ اتنا امیدوار ہو جانا چاہیے, نہ اتنا بے فکر ہو جانا چاہیے کہ ہم تو مثال کے طور پر اگر ہم اساتذہ زبان میں کہوں, میں سمجھوں کہ مثلا ہم تو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے, ہم تو جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنے والے, بس ہماری تو مغفرت ہونے والی, چاہے ہمارے اعمال کیسے بھی ہوں, ہماری بخشش بالآخر ہونے والی. یہ جو ہے وہ آپ بالکل ایکسٹریم پہ انسان چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں امیدوار ہوں کہ خداوند تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھک لے گا اور میں نجات پانے والا ہوں. اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر ہمیں بار بار نقطہ تکرار کو ملتا ہے کہ اگر آپ دعاؤں کی تلاوت کریں, دعائے ابو حمد سمالی کی, میرا مولا کہتا ہے کہ راجیاً خائفاً, اے پروردگار میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں اس حالت کے اندر, ایک جانب میں خوف زدہ ہوں جب میں اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو مجھے معاف نہ کرے, لیکن دوسری طرف جب میں تیری رحمت کو دیکھتا ہوں, تیرے کرم کو دیکھتا ہوں, تو میں امیدوار ہو جاتا ہوں. یہ وہ حالت ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کنٹینیوسلی ہمارے اندر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ اے بندہ مومن, تجھے اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ایک طرف امیدوار رہے خدا کی بارگاہ میں, خدا کی رحمت کا, خدا کی کرم کا, اور دوسری طرف ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ انسان نا امید اور مایوس ہو جائے اپنے نجات اور اس سے. لہٰذا خوف اور رجا کے درمیان کی ایک حالت انسان کے درمیان ہونی چاہیے. بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب مومن کے قلب کو اگر تم اوپن کرو, باز کرو, دیکھنے کی کوشش کرو, تم دیکھو گے کہ خوف اور رجا دونوں جو ہے برابر برابر اس کے دل کے اندر موجود ہے. ایک جانب خوف ہے اور دوسری طرف خداوند عالم کی رحمت کی امید جو ہے وہ اس کے دل کے اندر موجود ہے. اس جملے کو جو انسان امیدوار ہوتا ہے, انسان بہت زیادہ خداوند عالم کی رحمت سے نزدیک ہوتا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے, بعض دعاؤں میں اس کا ایکسٹریم جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. ایکسٹریم کیسے نظر آتا ہے؟ बाज़ अवक़ात आपको नज़र आता है कि जब मैं मिसाल दूँ, बाज़ अवक़ात जो दुनियावी इश्क के अंदर, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के इश्क के अंदर क्या होता है, एक आशिक और एक माशूक होता है। आशिक अपने माशूक को जब ये एहसास करता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गया हूँ, तो वहाँ पर वो क्या करना शुरू करता है, नाज़ करना शुरू करता है, इश्वा करना शुरू करता है, या सादे ज़बान में कहो नखरे करना शुरू करता है वहाँ पर। ठीक है, ये एहसास दिलाना शुरू कर, उसको मालूम है कि मैं ये सारे काम करूंगा तब भी जो है वो मेरा आशिक क्योंकि मुझसे मोहब्बत करता है, मेरा माशूक क्योंकि मुझसे मोहब्बत करता है, लिहाजा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता वो, क्योंकि वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका है, वो भी मुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। ये जो है वो उम्मीद का एक्सट्रीम होता है कि जब आप जो है अपने नाज उठाना शुरू करते हो, अपने जो है वो अपने मतालब अपने मुतालबात जो है वो पेश करना शुरू करते हो माशूक की बारगाह में, कहते हो कि अगर तुमने मसलन जो है मेरे साथ जो है वो इश्क नहीं किया तो मैं मसलन ये कर दूंगा, मैं जो है वो मसलन फ़लाँ काम अंजाम दे दूंगा। बाज़ दुआओं के अंदर हमें जो है वो इस एक्सट्रीम की जो है वो उम्मीद नज़र आती है अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए। मैं फ़कत दुआ अबू हमद सोमाली से जो है वो एक या दो जुमले आपके सामने पेश करता हूँ। ये जुमले आप जब सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि दुआ कुमैर के अंदर भी इस तरह के जुमले मिलते हैं और भी दुआओं के अंदर जो इस तरह के जुमले मिलना शुरू करते हैं। एक जुमला मैं आपके सामने पेश करता हूँ, मेरा मौला सैयद सज्जाद दुआ अबू हमद सोमाली में फरमाता है, एक बार दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौला कहता है, लाइन अदखलतनी नार लाउखबिरन्ना अहल नारे बहुब्बी लक। ए परवरदिगार, अगर तूने मुझे आतिश जहन्नम में भेज दिया, अभी आप देख रहे हैं उसको मालूम, एक शख्स जो है एहसास कर रहा है कि मैं जो है वो इस काबिल नहीं हूँ कि खुदा मुझे बख्शे, लेकिन वो कहता है कि परवरदिगार अगर ये हो गया कि तूने मुझे जो है वो आतिश जहन्नम में भेज दिया, यहाँ पर आके जो है वो अब खुदा को एक तरह से अपने कार्ड्स यूज़ करना शुरू करता है, खुदा के सामने, खुदा के सामने जो एक तरह से खुदा को नऊज़ुबिल्लाह मैं कलमा वो ना करूँ, लेकिन ये एक तरह का थ्रेट खुदा बंदे आलम को करना शुरू करता है। मैं भी कह रहा हूँ कि आप उस माना के अंदर लेके, ये उम्मीद की जो एक एक्सट्रीम है यहाँ पर कि खुदा बंदे आलम क्या करे कि अगर तूने खुदा बंदे आलम मुझे जहन्नम में भेज दिया, मुझे आतिश जहन्नम में भेज भी दिया, तो मैं क्या करूँगा जहन्नम के दरमियान जाके, मैं अहले जहन्नम को जाके बता दूंगा कि मैं तेरा आशिक हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करने वाला हूँ। और अजीब है, ये कैसे हो सकता है कि तू अपने महबूब को जो है वो उस अजाब का शिकार कर दे, ये नहीं हो सकता, मैं तुझसे तवक्को नहीं रखता, मैं इतना ज़्यादा उम्मीदवार हूँ तुझसे कि मैं आते से जहन्नुम में जो है वो लोगों को बता दूंगा। अब मैं लोगों को बता दूंगा यानी आप समझ रहे क्या कह रहे हैं खुदावंद आलम से, मैं लोगों को बता दूंगा यानी क्या, शायद मैं उसको बहुत ज़्यादा ओपन करके बयान नहीं कर सकता आपके सामने, लेकिन आप खुद इस जुमलों को समझें, उसकी उसकी डेप्थ को समझने की कोशिश करेंगे। खुदावंद आलम की बारगाह में उम्मीद का कमाल है ये कि इंसान जो है एक बंदे मोमिन जो है इतनी उम्मीद इतना ज़्यादा उम्मीदवार है खुदा की बारगाह के अंदर कि खुदा को ये कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि तू ये काम नहीं करेगा, और अगर तूने किया तो फिर मेरे पास भी कुछ कार्ड्स हैं जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये जो है वो एक एक जाविया है दुआओं का कि जिसके अंदर जो है वो इंसान को नज़र आता है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम जो है वो हमें किस कदर खुदा बंदे आलम से इश्क और आशिकी करने की तरफ जो है वो मायल करने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा से मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश कर रहे हैं। और वाकईतन खुदा ऐसी हकीकत का नाम है कि जिससे इंसान होब और मोहब्बत करे। आप जो सूरह अनकबूत जो हम लोग तिलावत करें उसमें नहीं आएगा, लेकिन हज़रत इब्राहिम के मुख्तलिफ और वाक़ियात पढ़ें, जब हज़रत इब्राहिम को आपने वो वाक़ियात सुने होंगे, जब हज़रत इब्राहिम को ने सितारे की पूजा की, चाँद की पूजा की और सूरज की पूजा की अपने कौम के लोगों के साथ चलते हुए, इमाम हज़रत इब्राहिम ने जब जब ग्रुप हो जाता था चाँद सूरज या सितारे, हज़रत इब्राहिम का जुमला क्या था, इन्नी ला उहिब्बुल आफ़िलीन, अगर शायद आयत का सही तरह से आयत की तलावत सही नहीं करो तो उसका मफहूम इस तरह से कि मैं मोहब्बत नहीं करता उस चीज़ से कि जो डूब जाती है, जो गुरूब हो जाती है, जो फना हो जाती है, जो मिट जाती है, उससे मैं मोहब्बत नहीं करता, एक ऐसी चीज़ जो बका बाकी रहने वाली उससे इंसान मोहब्बत करता है। मोहब्बत करने के भी कुछ तकाजे होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, हर चीज़ से इंसान को जो है मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। खुदावंद आलम वो ज़ात है कि जो हकीम मुतलक है, जो कादर मुतलक है, जो गनी मुतलक है, वाकईतन वो हस्ती है कि जिससे इंसान जो है वो मोहब्बत करे, तो ये जेब देता है कि इंसान जो है ऐसी हस्ती से मोहब्बत करे। खुदा बंदे आलम से दुआ ये कि हमें हकीकी मानों में खुदा का इश्क और मोहब्बत जो है वो अता करे कि जिसके बाद दुनिया की तमाम चीज़ों की बिलखसूस जो है वो हुब्बे दुनिया की जो है मोहब्बत हमारे दिलों से निकल जाए इंशाल्लाह। एक बार दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सूरह अनकबूत की तिलावत कर रहे थे, खुदा बंदे आलम के शुक्र गुजार हैं कि उसने हमें तौफीक अता फरमाई कि इस माह मुबारक रमज़ान के चंद लम्हात हम खुदा की किताब के साथ जो है गुजारें और ये कोशिश करें कि हद अकल तर्जुमे की हद तक इन कलमात को समझने की कोशिश करें कि खुदावंद आलम ने इस आसमानी किताब के अंदर, इस डिवाइन रिवेलेशन के अंदर जो है हमारे लिए क्या पैगामात पोशीदा किए हैं, पिनहान किए हैं और हमें बताए हैं, जिसके अंदर जो है वो हकाइक मौजूद हैं, खुशकतर मौजूद है, कि जिसके ऊपर इंसान अगर अपनी ज़िंदगी फ़र्दी और इज्तिमाई को गुजारना शुरू करे तो यकीनन जो है वो उसकी निजात का बायस बनेगा। हज़रत इब्राहिम के वाक़यात की हम लोग तिलावत कर रहे थे, सूरह अनकबूत की आयत नंबर 23 तक हमने तिलावत कर ली थी, इंशाल्लाह आज सॉरी 21 तक हमने तिलावत कर ली थी, आज जो है वो आयत नंबर 22 की तिलावत करते हैं। फ़कत एक नुक्ता जो मैं पिछले आयत के अंदर जो एक क्लेरिफिकेशन करना चाह रहा था, आयत नंबर 20 की जिसकी हमने तिलावत की थी, जिसकी आयत शुरू इस तरह से होती है, कुल सीरू फिल अर्थ फंजुरू कैफ़ा बदा अल खल्क, आयत नंबर 20 के अंदर जब खुदावंद ने कहा कुल सीरू फिल अर्थ, इस आयत के बारे में मुफस्सरीन के दो कॉल हैं। कुछ मुफस्सरीन का कॉल है कि यह हज़रत इब्राहिम का जुमला है लोगों के सामने, अपनी उम्मत के सामने, और अक्सर मुफस्सरीन का ख्याल है जिसमें अल्लाह ताला भी शामिल है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार दुरूद भेजा मोहम्मद अल्लाह अपनी उम्मत को जो है वो ये जुमला उनसे मुखातब होकर कहा था हज़रत इब्राहिम के वाक़े को बताने के बाद, इस तरह से उनसे कहा कि तुम जो है वो ज़मीन पर जाओ और खुदावंद आलम की खिलकत का किस तरह से खुदा ने आगाज़ किया था उसको जाकर देखो। आयत नंबर 20 के एंड में ये जुमला आया था कि ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ, खुदावंद आलम नशे आखरत को दोबारा से जो है वो अहया करेगा, दोबारा से जो है नशे आखरत को जो है पैदा करेगा। उसके बारे में आयत नंबर 21 में एक नुक्ता बताया कि जो हमने कल के दरस के आखिर में बयान किया था, युअज़्ज़िबु मन यशा व यरहमु मन यशा व इलैहि तुक़लबून, इस दिन क्योंकि खुदावंद आलम की मालिकियत का दिन है, खुदावंद आलम के इक्तदार के ज़ुहूर का दिन है, खुदावंद आलम जिसको चाहे उसको अजाब करे, युअज़्ज़िबु मन यशा, ये इख्तियार खुदावंदी के अंदर है, युअज़्ज़िबु मन यशा व यरहमु मन यशा, जिसको चाहे खुदावंद आलम बख्श दे, उससे कोई सवाल करने वाला नहीं है, उसकी कब्ज़े कुदरत में तमाम मालिकियत मौजूद है और उस दिन जो है उस मालिकियत का इजहार करने वाला है, व इलैहि तुक़लबून, और हम जो है उसकी तरफ जो है पलट के जाने वाले हैं। ये एक तरफ खुदावंद आलम ने अपनी कुदरत का इजहार करके बता दिया कि खुदावंद आलम जो है वो किस कदर कादिर है उस दिन कि जिसको चाहे अजाब करे और जिसको चाहे बख्श दे, ये खुदावंद आलम के कब्ज़े कुदरत के अंदर मौजूद है। दूसरी तरफ बंदगाने खुदा को अपने बंदों को जो है वो बता रहा है कि तुम्हारे इख्तियार में क्या है, उस दिन अपनी कुदरत का इजहार किया, कुदरत कामिला का इजहार किया, युअज़्ज़िबु मन यशा व यरहमु मन यशा, हम जिसको चाहे अज़ाब करें और जिसको चाहे बख्श दें। नशे आखिरा की तफसीर खुदावंद आलम कर रहा है, अपनी कुदरत का इजहार किया, अब बंदों को बता रहा है कि तुम किस कदर आजिज़ हो, बंदों को बता रहा है कि तुम्हारी क्या हैसियत है उस दिन। खुदावंद आलम इस आयत के अंदर, आयत नंबर 22 के अंदर इस तरह कह रहा है, वमा अंता बिमुअजिज़ीना फिल अर्दि वला फिस समा, मौजिज एजाज का मतलब है, आजिज का मतलब जिससे हम उर्दू में यूज़ करते हैं, खुदावंद आलम ये कह रहा है कि बंदो वा अंतुम, तुम ऐसे नहीं हो, बेमुअजिज़ीना कि आजिज कर दो, खुदावंद आलम की जो कुदरत मुतलका खुदा ने इज़हार किया है तुम्हारे बस के अंदर नहीं कि खुदा को आजिज कर दो, खुदा के रास्ते में जो है रुकावट बनो, खुदा के इख्तियार में जो रुकावट बनो, ये तुम्हारे बस में नहीं है। फिल अर्ज़ वला फिस समा, ज़मीन व आसमान के अंदर जो है वो तुम कहीं भी चले जाओ, खुदा की कुदरत मुतलका से जो है तुम खारिज नहीं हो। लिहाजा एक और आयत के अंदर, शायद आपने सूरह रहमान के अंदर जो हम लोग तिलावत करते हैं इस आयत की, कि जिसके अंदर खुदावंद आलम फरमाता है कि या माशर अल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक्तारिस समावात वल अर्द फनफुज़ू, अगर तुम्हारी कुदरत में है तो ज़मीन और आसमान के अंदर से निकल सकते हो, निकल जाओ इस मखलूकात कायनात, खुदावंद आलम की मखलूकात के दायरे से अगर तुम निकलना चाहते हो निकल जाओ, अगर तुम्हारे बस में तो करके दिखाओ, लेकिन नहीं है तुम्हारे बस के अंदर, तुम ये काम अंजाम नहीं दे सकते। वो आपने मशहूर हदीस सुनी होगी, मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहि सलाम की बारगाह में एक शख्स आता है और मौला से कहते हैं, मौला मैं गुनाह करना चाहता हूँ, कोई तरीका है? मौला ने चंद उसको कंडीशन बताई, कहा कि इन कंडीशन का ख्याल रखो, जितने गुनाह करने कर लो, उसमें से एक कंडीशन इमाम ने ये बताई थी कि तुम खुदा के दायरे कुदरत के अंदर इस वक्त हो, उसकी मासियत क्यों करते हो, जाओ उसकी कुदरत से बाहर निकल जाओ, उसके रूल से बाहर निकल जाओ, फिर जो गुनाह करने करो, उसकी जो मासियत करनी करो, लेकिन ये तुम्हारे बस में नहीं है क्योंकि तुम इस कुदरत से तुम मखलूक के खुदा फना हो जाओगे, उसकी उसका वजूद वो जो है तुम्हें वजूद फराम कर रहा है, उसकी दायरे कुदरत से बाहर निकलने का मतलब ये तुम्हारा फना है, तुम्हारा वजूद जो है उसके अंदर बाकी नहीं रहेगा। बस यहाँ पर भी खुदावंद आलम हमसे ये कह रहा है कि ए बंदगाने खुदा, तुम्हारे इख्तियार में नहीं है कि तुम खुदा के रास्ते में जो वो हर्डल्स क्रिएट करो, तुम खुदा को आजिज नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम तो आजिज नहीं कर सकते, क्या खुदा हमारे अलावा कोई और शख्स है? आयत के दूसरे टुकड़ों में खुदावंद आलम ने तीनों चीज़ों की नफ़ी की है। पहले हिस्से में बताया कि तुम खुदा को आजिज़ नहीं कर सकते, दूसरे हिस्से में बताया कि तुम्हारे अलावा कोई भी हकीकत ऐसी नहीं है कि जो खुदा को आजिज़ करे, तीसरे हिस्से में ये बताया कि तुम अपने साथ किसी और को मिला के भी ये काम अंजाम नहीं दे सकते, ना तुम तन्हाई में काम अंजाम दे सकते हो, ना तुम्हारे अलावा कोई शख्स तन्हाई में काम अंजाम दे सकता है, ना तुम सबके सब मिलकर ये काम को अंजाम दे सकते हो। इन चीज़ों को खुदावंद ने किस तरह बताया, आयत का पहला टुकड़ा मैंने आपके सामने बताया, वमा अंत बिमौजिज़ीना फिल अर्ज़ वला फिस समा, तुम खुद ये सारे काम अंजाम नहीं दे सकते। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलीयिन वला नसीर, ना इस दिन खुदा के अलावा, मिन दूनिल्लाह खुदा के अलावा ना तुम्हारा कोई वली है ना तुम्हारा कोई नसीर है। वली और नसीर में क्या फ़र्क है, खुदावंद ने क्यों ये दो कलमे इस्तेमाल किए, फ़कत खुदा वली कह देता, खुदा नसीर कह देता, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है? मैं आपको छोटी सी सादा सी मिसाल देकर अर्ज़ करता हूँ। देखिए जब एक बच्चा, छोटा सा बच्चा दुनिया में आता है, पैदा होता है, ये बच्चा छोटा जब होता है इसकी कुदरत में कुछ भी नहीं होता, इसके इख्तियार में कुछ भी नहीं होता, इसको हर चीज़ उसकी माँ अंजाम दे, इसको खाना खिलाना हो, उसको आज के दौर के अंदर कहीं डायपर चेंज करना हो, उसको जो भी काम करना है उसकी वालदा को ये सारे काम अंजाम देने, उसके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। वो अपने हाथों को भी जो है सही मानों में मिला, वो किसी जगह से अपने आप को मूव भी नहीं कर सकता, वो अपने डेंजर का एहसास करने के बावजूद जो है उससे अपने आप को बचा नहीं सकता। ठीक है, इस मौके पर इसको विलायत की ज़रूरत है। विलायत का मतलब ये कि आप किसी को 100% अपने कंट्रोल मिले, आप उसके मुरब्बी बन जाए, आपके ऊपर आपको जो उस पर कामिल इख्तियार हो, इसको कहते हैं वली। वली को क्यों अहले बैत अलैहिस सलाम को अपना वली कहते हैं, अल्लाह वलीलदीना, खुदावंद आलम को भी अपना वली कहते हैं, क्यों अहले बैत अलैहिस सलाम को अपना वली कहते हैं, इनकी विलायत का मतलब है कि वो उनका उनको जो है हमारे ऊपर कंट्रोल हासिल हो, उनको हमारी दुनिया और आखिरत दोनों पे कंट्रोल हासिल हो, हमारे हर चीज़ पे कंट्रोल हासिल हो, जैसा वो कहें हम उसके मुताबिक जो अमल करना शुरू करें और उनकी तरबियत में अपने आप को दे, जिसको कहते हैं विलायत। ठीक है, इसके बाद जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, ऐसा ऐसा एक मौका ऐसा आता है कि जब बच्चा जो कदम उठाना शुरू करता है, बच्चा जो चलना शुरू करता है, इस मौके पर मैं और आप क्या करते हैं, इस मौके पर जो है वो बच्चा कदम उठाता है, मेरा और आपका काम ये होता है उसको थोड़ा सा सपोर्ट फराम करें, थोड़ा सा जो है वो उसके हाथ को जो थामे ताकि वो अपना काम अंजाम दे। ऐसा नहीं है कि बच्चे को मैं पूरा जो है अपने हाथों से उठा के और चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं, बच्चा खुद से कुछ कोशिश कर रहा है। एक साल पहले तक बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता था, मेरा काम ये था कि मैं उसको गोद में उठाऊँ और सारे कामों को अंजाम दूँ। आज जो है वो बच्चा कदम उठाने की कोशिश कर रहा है, मेरा काम ये कि उसकी कुछ मदद करूँ, उसको कुछ सपोर्ट चाहिए, इसको कहते हैं नुसरत करना, सपोर्ट करना। यानी आप कुछ काम कर रहे हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, आपके पास कुछ अथॉरिटी है, यू आर डूइंग समथिंग, लेकिन आपको सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि यू कैन नॉट डू ऑल द थिंग्स, यहाँ पर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, इसको कहते हैं नुसरत करना। आप खुदावंद आलम कह रहे हैं कि ना उस दिन तुम्हारा कोई वली होगा कि जो पूरा का पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में ले और तुम्हें जो खुदा के अज़ाब से निजात दे दे, कोई नहीं हो सकता। ना ये हो सकता है कि तुम्हारे इख्तियार में कुछ चीज़ें हो कि तुम अपना ऐसा ऐसा खुदा से के अज़ाब से अपने आप को बचा लो और कोई और आके तुम्हें और सपोर्ट फराम कर ले, तुम खुदा के अज़ाब से निकल जाओ, ना ये भी नहीं हो सकता। बस ना तुम्हारे इख्तियार में कामिलन है, ना किसी और के इख्तियार में कामिलन है, और ना तुम दोनों मिलकर इस काम को अंजाम दे सकते हो। बस खुदावंद आलम ये बता रहे, तुम सब के सब जो है वो आजिज हो, खुद खुदा है कि जो कादर मुतलक है, और वो जिसको चाहे अजाब करे और वो जिसको चाहे निजात दे दे, वो जिस पर चाहे रहम करे, ना तुम्हारे कुदरत में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। इसको कहने के बाद, बंदगान खुदा से खिताब करने के बाद, आयत नंबर 23 के अंदर खुदावंद आलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो खिताब कर रहे हैं। अब ये हबीब और महबूब के दरमियान जो है मुकालमा है। अब खुदावंद आलम बता रहा है कि ए हबीब, वहाँ पर बंदों से जब खिताब था तो खुदा ने कहा युअज़्ज़िबु मैयशा व यरहमु मैयशा, खुदा ने कहा कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं किसको अजाब करूँगा किसको रहम करूँगा। अब रसूल से जब मुखातिब हो रहा है तो रसूल को बता रहा है कि ए रसूल, ए हबीब, ये दरहकीकत रसूल से दिलजोई कर रहे हैं खुदावंद आलम। खुदावंद आलम क्या कह रहे हैं, वल्लज़ीन कफरू बिआयातिल्लाह वलिकाई, आयत में सरातन ये नहीं कहा गया कि मैं रसूल से खिताब कर रहा हूँ, लेकिन आयत में बहुत सारी निशानियाँ ऐसी हैं जिससे हम ये साबित कर सकते हैं। मैं उस तफसील में नहीं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह कि जो इस चीज़ को कबूल करते हुए कि ऐसा ही है कि ये खुदावंद आलम का रसूल से खिताब है, इस आयत को समझने की कोशिश करें। आयत क्या कह रही है, वल्लज़ीन कफरू बिआयातिल्लाह वलिकाई, आयत का तर्जुमा इस तरह से, वो लोग कि जिन्होंने कुफ इख्तियार किया, किस चीज़ का, आयात इलाही का, द साइंस ऑफ अल्लाह का इनकार किया, व लिकाही, और अल्लाह की तरफ पलट के जाने का इनकार किया, खुदा से मुलाकात होनी है, दर हकीकत कहा जाए माद का इनकार किया। बस एक यूनिवर्सल चीज़ खुदावंद आलम ने कही कि तुमने जो है वो खुदा की आयात का इनकार किया, और ख़ास तौर पर एक चीज़ का जिक्र किया, स्पेसिफिकली जो एक चीज़ को मैंशन किया वो क्या चीज़ है, वो माद का जिक्र है, वो खुदावंद आलम से मुलाकात का जिक्र है, कि वो लोग कि जिन्होंने खुदा से मुलाकात का इनकार किया, जैसे पिछली आयतों में गुजर चुका है। माद जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि जिस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कुरान के अंदर भी, अहले बैत अलैहिस्सलाम की रिवायात के अंदर भी, लिहाजा यहाँ पर भी खुदावंद आलम ने अलग से उसको जो है सेपरेटली इसको मेंशन किया, वरना आयत इलाही के अंदर जहाँ خداوند عالم کی توحید کی آیات موجود ہے جہاں خداوند عالم کی نبی نے اپنی آیات و معجزے کی صورت میں پیش کی, اسی طرح سے مات کی آیات بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے, لہٰذا اس کے اندر شامل تھا, لیکن الگ سے جو ہے خداوند عالم نے لقاء کو اور مات کو جو ہے یہاں پر ذکر کیا. خداوند عالم اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب, وہ لوگ جنہوں نے آیات الہی کا انکار کیا اور لقاء الہی کا انکار کیا یعنی مات کا انکار کیا, ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اولئک الذی اولئک یئسوا من رحمتی و اولئک لہم عذاب علیم. دو حقیقتوں خداوند عالم نے ان کے بارے میں بتایا کہ ایک یہ کہ ان لوگوں کو مایوس ہو جانا چاہیے خدا کی رحمت سے, اب ختم اللہ علی قلوب, جن لوگوں نے حق کے آنے کے بعد, جن لوگوں نے حق کے روشن ہونے کے بعد بھی آیات الہی کا انکار کیا, آیات بیان آنے کے بعد اس کا انکار کیا, آیات بیان آنے کے بعد لکھا ہے خدا کا انکار کیا, اولئک یعیسوا من رحمتی, ان لوگوں کو میری رحمت سے مایوس ہو جانا چاہیے. یا یہ کہوں کہ یا اس طرح سے ہم لوگ ترجمہ کر سکتے ہیں, وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہیں, ان کو امید نہیں ہے خدا کی رحمت, کیونکہ آخرت کا انکار کریں کس بات کی امید رکھیں گے وہ لوگ. یا اس طرح سے ہم لوگ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو مایوس ہو جانا چاہیے, اب ان کے لیے کوئی امید کا راستہ باقی نہیں ہے, جن لوگوں نے خدا کی آیات کا انکار کیا, جن لوگوں نے لکھا ہے خدا کا انکار کیا, یہ لوگ جو ہے مایوس تھے. بس ایک طرف رحمت الہی سے مایوسی, رحمت الہی کا دروازہ ان لوگوں میں بند کیا, شاید آپ یہ کہیں کہ رحمت کا دروازہ بند ہو گیا, خداوند نے کہا نہیں, فقط ایسا نہیں کہ میں اپنی رحمت کا دروازہ بند کروں گا, بلکہ دوسری طرف ان کو جو ہے وہ عذاب علیم کا شکار بھی کرنے والا ہوں. اولئک لہم عذاب علیم, خداوند عالم کہہ رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جو ہے وہ عذاب علیم ہے, جن کو جو ہے وہ سخت ترین عذاب کا جو ہے وہ شکار ہونا ہے, اور یہ لوگ جو ہے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیں کہ یہ کام جو ہے وہ ان کا کیا جانے والا ہے. ان چند آیات کے اندر کے جو ہم نے شروع کی تھی, خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کا ابتدائی واقعہ, اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم نے حضرت ابراہیم کے واقعات کو شروع کیا تھا, اس کے اندر خداوند عالم نے یہ فرمایا تھا آیت نمبر 16 کے اندر, اگر آپ کو یاد ہو آیت نمبر 16 سے جب حضرت ابراہیم کا واقعہ شروع ہوا تھا, ہم نے کیا کہا تھا؟ وہ ابراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوا, آیت نمبر 16 کے اندر خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کا ایک اسٹیٹمنٹ جو قوم کے ساتھ ڈائلاگ ہوا تھا اس کو بیان کرنا شروع کیا. حضرت ابراہیم نے لوگوں سے کیا کہا؟ تم خدا کی عبادت کرو, تقوی اختیار کرو. اس کے ذیل کے اندر جو ہم نے کچھ ڈسکشن شروع کیا آیت قرآن کے اندر, آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 23 تک خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کے ان واقعات کو ذکر کیا کہ یہ ڈائلاگ کس طرح سے ہو رہا تھا. خداوند عالم کو اس کی توحید کا اور قیامت کی یاد دلائی ابراہیم نے قوم کو, قوم نے انکار کیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مخاطبہ تھا, ایک بار درود بھیجو محمد علیہ, قوم سے جو خطاب تھا اس کو آیت نمبر 23 کے اندر ذکر کیا گیا. اب وہ جو آیت نمبر 16 میں حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا تھا اعبدوا اللہ واتقوا, قوم نے کیا جواب دیا؟ خداوند عالم آیت نمبر 24 میں بتا رہے ہیں, حضرت ابراہیم نے قوم سے جو ہے وہ ایک ریکویسٹ کی کہ اے میری قوم, اے میرے چاہنے والوں, اے میرے ماننے والوں, تم خدا کی اطاعت کرو, عبادت کرو, خدا کی پرستش کرو, ورشپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, واتقوا اللہ, خدا کا جو ہے تقوی اختیار کرو. اس کے جواب میں قوم نے کیا کیا؟ قوم نے خود حضرت موسیٰ کی آواز, حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا یا نہیں کہا؟ خداوند عالم اس کو یہ نقل کرے, فما کان جواب قومی الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه. قوم ابراہیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کو رپلائی میں کیا کہا جب حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ اے قوم خدا کی اطاعت کرو, جواب میں ان لوگوں نے کیا کہا؟ ما کان, قرآن کہتا ما کان جواب قومی, کچھ بھی جواب نہیں دیا, الا ہاں فقط ایک بات کہی ان لوگوں نے, درکیت وہ بات بھی ڈائریکٹ حضرت ابراہیم کو رپلائی نہیں کیا ان لوگوں نے, کیا کہا؟ اقتلوا حرقوه, یا ان کو قتل کر دو, یا ان کو جو ہے وہ آگ میں جلا دو, ان کو جو ہے وہ آتش کے حوالے کر دو. یہ قوم کا جواب تھا, جو یہ قوم کا رپلائی تھا جو قوم نے جو حضرت ابراہیم کو اس سوال کے جواب میں, کہ جب خداوند عالم کی اس نبی نے, خداوند عالم کی اس ولی نے اپنی قوم سے یہ طلب کیا کہ اے میری قوم آؤ خدا کے راستے پر چلو, اے میری قوم آؤ خدا کا تقوی اختیار کرو, خدا کی یاد ان لوگوں کو دلائے, خدا کا ذکر ان کو یاد دلایا, ان کو اپنی فطرت کی طرف پلٹانے کی کوشش کی, وہ قوم کے جو بتوں کی پوجا کے اندر ملوث تھی, اس کو جب حق کی بات, حق کا راستہ دکھانے کی کوشش کی, تو اس قوم نے جواب میں حضرت ابراہیم کو جواب دینے کے بجائے ایک کام انجام دیا, ایک جواب دیا, وہ کہا یہ تھا کہ یا ان کو قتل کر دو, یا ان کو جو ہے جلا دو. بعض علماء کا قول یہ کہ کچھ گروہ, کچھ لوگوں کا قول یہ تھا کہ ان کو جلا دیا جائے, کچھ لوگوں کا قول یہ تھا کہ ان لوگوں کو, ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے. بالآخر قوم نے ڈیسیشن یہ لیا, قوم کے بڑوں نے ڈیسیشن یہ لیا کہ حضرت ابراہیم کو جو ہے وہ آگ کے حوالے کر دیا جائے. جب خداوند عالم نے ان آیات کے اندر بہت ہی جو ہے وہ سمپلیفائی کر کے, بہت ہی سمرائز کر کے اس واقعے کو پیش کیا. اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں, حضرت سورہ انبیاء کے اندر سورہ نمبر 21 کے اندر خداوند عالم نے آیت نمبر 51 آنورڈز اس واقعے کو زیادہ تفصیل سے جو ہے وہاں پہ ذکر کیا ہے. मैं उन आयत की तिलावत नहीं कर रहा हूँ कि जो सूरह अंबिया में, क्योंकि वक्त भी बहुत कम है। आप अगर तिलावत करना चाहते हैं इन आयत की तिलावत करें, इंशाल्लाह जो है इस वाक़ियात को आप जो है तफसील से वहाँ पर देख सकते हैं। उन वाक़ियात को जो भी वहाँ पर पेश है, हज़रत इब्राहिम को जो है नार के हवाले किया गया, वो मशहूर जुमला आपको याद होगा जहाँ पर खुदावंद आलम ये कहता है या नार कूनी बदन व सलामन अला इब्राहिम। खुदावंद आलम का हुक्म ये आता है कि नार ए आतिश ए फायर, तू इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है वो उनको जो है वो इस्तराहत की जगह बन जा, उनके लिए जो है वो सलामती की जगह बन जा। और नार ने इसी तरह से किया, हुक्म खुदावंद आलम की इताअत की। इसके बाद यहाँ पर जो है आयत फकत इस तरह से कहती है, किस तरह से तफसील यहाँ पर जिक्र नहीं की, खुदावंद आलम क्या कहते हैं, फंजाहुल्लाहु मिनन नार, खुदावंद आलम ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है वो आतिश से, आग से जो है वो निजात अता की। बस कौम ने डिसीशन ये लिया कि इस बंदे खुदा को आग के हवाले किया जाए। खुदावंद आलम ये कहते हैं कि खुदावंद आलम का इरादा कुछ और था, और खुदावंद आलम का इरादा जो है वो कामयाब होने वाला है, तुम्हारा इरादे जो है वो कामयाब होने वाले नहीं है। खुदा ने क्या इरादा किया था कि उनको निजात दिया, खुदा ने जो उनको निजात दी। इसके बाद आखिर आयत के अंदर खुदावंद आलम ये कह रहा है इन्ना फी ज़ालिका लायातिन लिकौमी युमिनून, हज़रत इब्राहिम के इस किस्से के अंदर ईमान वालों के लिए बहुत सारी आयात, बहुत सारी निशानियाँ, बहुत सारे साइंस मौजूद हैं। इस टुकड़े के अंदर खुदावंद आलम ने सराहत के साथ फ़कत एक आयत को जिक्र किया है, वो आयत क्या थी कि खुदावंद आलम ने अंजाहुल्लाह, खुदावंद आलम ने उनको निजात दी। लेकिन कलमा जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया वो आयत का कलमा इस्तेमाल किया गया, प्लूरल इस्तेमाल किया गया, बहुत सारे साइंस है अल्लाह ताला के जो हज़रत इब्राहिम के वाक़े के अंदर मौजूद हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इन्हीं आयात को एक बार दोबारा से पढ़ने की कोशिश करें, आपको खुद को जो है वो बहुत सारे साइंस नज़र आना शुरू होंगे इन्हीं आयात के अंदर। एक साइन जो बहुत वाज है वो ये है कि मैं और आप जो अंबिया अलैहिस्सलाम से, अहले बैत अलैहिस्सलाम से सीख सकते हैं, वो ये सीख सकते हैं, अगर आपकी कौम, आपके अतराफ के रहने वाले लोग, आपके अतराफ में रहने वालों की मेजॉरिटी खुदा के दीन से अगेंस्ट में चल रही है, खुदा के दीन के अगेंस्ट में कोई काम अंजाम दे रही है, मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है? मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी ये नहीं बनती कि हम खामोशी से बैठ जाएं और ये समझे कि मैं अपने घर के अंदर, अपनी इमाम बारगाह के अंदर अपने दीन पर अमल कर रहा हूं, ये काफ़ी है। नहीं अज़ीज़ाने गिरामी, अंबिया की सीरत मुझे और आपको ये बताती है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के दरमियान गए और उनको हक बात की हिदायत की, कहा कि देखो ये हक का रास्ता है, इस रास्ते पर चलो, और इसके लिए जो भी मुश्किलात आई उनको फेस किया। कौम ने जो है वो कहा कि हम उनको आतिश में, आग में जला दें, कहा कि मसला नहीं है, तो मुझे आग में जला दो, और उस आग के लिए राज़ी थे। खुदावंद आलम ने अपने नबी की, अपने वली की जो है हिफाजत की। और कहा एक और नुकता जो आपको सूरह अंबिया के वाक़े में बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि हज़रत इब्राहिम ने जब ये तहरीक का आगाज़ किया, जब इस मूवमेंट का आगाज़ किया, जब लोगों के खिलाफ बोलना शुरू किया, कुरान कहता है फ़तन, हज़रत इब्राहिम उस वक्त एक जवान थे, एक नौजवान था, जब उसने देखा कि उसकी कौम हक के रास्ते पर नहीं है, उसने हक का आलम बुलंद किया और कौम को आके हिदायत का रास्ता दिखाना शुरू किया कि देखो ये हक का रास्ता है, इस रास्ते पर तुम चलना शुरू करो, इसमें जो है तुम्हारी निजात का बायस है। उसी आयत के अंदर खुदावंद आलम का नबी ये भी बताता है हमें कि जब अपने चचा को देखा कि वो खुद बुत तराश थे, वो खुद आइडल मेकिंग की फैक्ट्री थे उनके चचा, उनको जाके भी उन्होंने नसीहत की कि चचा गर्चे उनके एहसान थे, एहतराम का लिहाज रखा, लेकिन हक की नसीहत की उनको भी, उनको भी बताया कि हक का रास्ता क्या है और हक का जिस पे तुम्हें अमल करना है। इन तमाम वाक़ियात के अंदर अज़ीज़ाने गिरामी मैं ये कह रहा हूँ जो हमें वाक़ियात सीखने की ज़रूरत है, जो लेसन सीखने की ज़रूरत है, वो ये खुदावंद आलम ये कह रहा है कि ये जो तारीखी हिस्टोरिकल फैक्ट्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये फ़कत कहानियाँ नहीं है, ये फ़कत और फ़कत फिक्शन नहीं है, ये हकायक है और उसमें तुम्हारे लिए दर्स हैं, तुम्हारे लिए इबरतें हैं, तुम्हारे लिए पैगाम हैं, उनको हासिल करो, उसके मुताबिक जो वो अपनी ज़िंदगी गुज़ारो। और कौन लोग इसे पैगाम हासिल करिए, लिकौमी युमिनून, जो लोग हकीकी मानों में मोमिन होंगे, फ़कत वो लोग हैं कि जो खुदा के दीन पर अमल करेंगे। इसके बाद एक और नुकता जिसकी तरफ इस अगली आयत के अंदर, आयत नंबर 25 के अंदर इशारा करा है, शायद एक अहम तरीन नुकता है कि जिसको मुझे और आपको समझने की कोशिश करी। बहुत सारे गुनाह, बहुत सारी खराबियां जो हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद होती हैं उसकी इल्लत जो है वो खुदावंद आलम यहाँ पे बता रहा है। मेरा और आपका सवाल ये होगा कि कौम क्यों इस कदर पस्त होती है कि बुतों की पूजा करना शुरू करती है, क्यों एक कौम पस्त होती है कि जो अपने हाथों से बनाए हुए असनाम की जो है परस्तिश करना शुरू करती है। बहुत ही रैशनल चीज़ है कि इंसान अपने हाथ से देखता है कि मैंने अपने हाथ से इस चीज़ को बनाया है, मैं कैसे इसको अपना खुदा बना लूँ, मैं कैसे इसके सामने सजदा कर दूँ और इसके सामने जो है वो सुजूद की हालत में चला दूँ, कैसे ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, क्यों एक शख्स इतना पस्त हो जाता है, क्यों एक कौम, एक नेशन जो इतनी पस्त हो जाती है कि ये हरकतें करती है। आज की दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह जब हज़रत लूत के वाक़ियात आएंगे, अभी चंद दिनों, दो दिन पहले जो US के अंदर भी वाक़ हुआ, उसके बहुत सारे डायमेंशन्स हैं जिस पर गुफ्तगू की जानी चाहिए, शायद उन सारे डायमेंशन्स पे जो है वो गुफ्तगू मैं यहाँ पर नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक डायमेंशन जो आज अगले सूर्य हजरत लूत के वाक्यात में भी आने वाली आयत के अंदर मैं इशारा करता चलूँ, आज के दौर के अंदर इस वाक्य से एक सेम्पथी क्रिएट की जा रही है, एक खास ग्रोह के लिए, खास कौम के लिए, खास कामों के लिए जो एक सेम्पथी क्रिएट की जा रही है सोसाइटी के अंदर, उसको एक वैल्यू बनाया जा रहा है कि मुझे और आपको कहा जा रहा है कि इसके अगेंस्ट में बोलना जो है मुनासिब नहीं है, इसके अगेंस्ट में अगर तुमने बोला तुम जो है वो वुमेन वैल्यूज के अगेंस्ट बोल रहे हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट में बोल रहे हो। ये सब कुछ क्यों होता है, ये माशरे के अंदर ये फिजा बनाई क्यों जाती है, किस तरह से काम किया जाता है। खुदावंद आलम ने इस राज को जो इस अगली आयत के अंदर फाश किया, खुदावंद आलम क्या कहता है, वकाला इन नमत तखस्तुम मिन दूनिल्लाहि औसाना। खुदावंद आलम ये कहता है काला इन हज़रत इब्राहिम ने अपनी कौम से कहा इन नमा इतखस्तुम मिन दूनिल्लाहि औसाना, यकीनन तुम लोगों ने जो खुदा के अलावा दीगर आइडल्स की वर्शिप शुरू कर दी, इबादत शुरू कर दी है, इसकी इल्लत क्या है, क्यों ये सारे काम तुम कर रहे हो, मवद्दतन बैनकुम फिल हयात दुनिया, इसका रीज़न क्या है, इसकी इल्लत क्या है, इसका सबब क्या है, क्यों तुमने ये सारे काम अंजाम दिए। ये वो सबब है, ये वो मवद्दत है, ये वो मोहब्बतें हैं, ये वो रिश्ते हैं, ये वो दोस्तियाँ हैं जो तुम्हारी आपस के अंदर है। इन्हीं मैं इस चीज़ को जो है वो रोशन करने के लिए कि खुद कुरान के ऐसे इस्तेफादा करता चलूँ, खुदावंद आलम ने हज़रत इब्राहिम के वाक़े के अंदर जब हज़रत इब्राहिम ने अपने चचा से जो है पूछा था इसकाल अबी व कौम ही, अपनी कौम से अपने चचा से पूछा माँ हादी तमासिल लती अंतुम लहा आकिफून, ये कौन सी ये तस्वीरें हैं, ये कौन से बुत हैं कि जिसकी तुम परस्तिश करते हो। कालू वजदना आबाना लहा आबिदीन, कहा कि हमने अपने बाप दादाओं को जो है यही काम करते हुए देखा है, वो लोग ये काम करते थे लिहाजा हम भी जो है वो यही काम करते आ रहे हैं। इसी तरह से एक और मकाम बात इब्राहिम से कहते हैं कि ये तो ना सुनते हैं, ना तुम्हें कोई ज़रर पहुंचा सकते हैं, ना तुम्हें कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, क्यों तुम इसकी बात करते हो। कालू बल वजदना आबा आना दालिका यफ़लून, हमने अपने बाप दादाओं को इसी तरह से देखा था, वो लोग भी ये काम अंजाम देते हुए आ रहे थे। इस आयत के अंदर हज़रत इब्राहिम अपनी कौम को ये कह रहे हैं कि तुम इस पस्ती के अंदर जो आ चुके हो, इस दलदल के अंदर जो फंस चुके हो, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये कि तुम्हारी जो आपस के ताल्लुकात है, आपस की दोस्तियाँ हैं, तुम अपने दोस्त को, अपने अहबाब को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को, अपने करीबियों को, अपने पड़ोसियों को देखते हो कि ये काम करते हुए, तुम्हें भी होता है कि हम भी जो है वो जिस तरह से इंग्लिश में एक सेइंग है डू इन रोम एज द रोमन्स डू, जैसे वो लोग करते हैं वैसा ही होना चाहिए, कि हम क्यों जो है वो लोगों से अलग होकर ज़िंदगी गुजारें, हमें वैसा ही होना चाहिए जैसे लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, जिस तरह से लोग ज़िंदगी गुजारें हमें भी वैसे ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आज की दुनिया में जो फैशन चल रहा है, आज की दुनिया में जो मॉड है लिबास पहनने का, हर जिस किस्म की चीज़ दुनिया के अंदर आए थे, हमें भी वही काम करना चाहिए, हमें दुनिया से अलग होना नहीं चाहिए। अजीज़ान गिरामी, हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें खुदा से सवाल करना होगा खुदा क्या कहता है, हम ह्यूमनिज्म के कायल नहीं हैं कि जो बंदे कहते हैं उनको करना शुरू कर दे, नहीं, जो खुदा कहते हैं उसकी इताअत करनी। यहाँ तक कि खुदावंद आलम ने पिछली आयत के अंदर सूरह नूह के वाक्य में क्या कहा था कि अगर तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए फलात होते हुमा, तुम्हें उनकी भी इताअत नहीं करनी। जब माँ बाप की इताअत का मना कर दिया तो जितना कि जितनी भी मोहब्बतें, मवद्दतें, रिश्ते, नाते, दोस्तियाँ, ये सब कुछ अगर तुम्हें गलत रास्ते पे लेके जाना चाह रही हो, तुम्हें यू हैव टू रेजिस्ट इट, आपको उससे रेजिस्ट कर शो करनी है। अगर नहीं की तो हम सब के सब जो वो इस अजाब का शिकार हो जाएंगे, हम सब के सब जो इस खराबी में मुब्तला हो जाएंगे। लिहाजा खुदावंद आलम इस कौम को कह रहा है, ये जो शिर्क जिसको कुरान ने ज़ुल्म अदीम कहा है, इस शिर्क में कि जो रैशनल तरीके से भी इंसान को समझ में नहीं आता कि आज की दुनिया के अंदर भी जो है वो इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर आपको लगता है कि लोग कैसे हैं कि जो इन बुतों की पूजा कर रहे हैं, खुदावंद आलम ये कह रहा है कि सबकी इल्लत ये कि मवद्दतन बैनकुम, ये तुम्हारे आपस के रिश्ते हैं, ये दुनिया के अंदर आपस के ताल्लुकात हैं, ये तुम्हें मजबूर करते हैं कि तुम जो है वो इस तरह के पास कामों को अंजाम दो। मुझे और आपको ये देखना है कि मैं और आप कौन सारे काम ऐसे खुदा ना खास्ता अंजाम दे रहे हैं कि जिसकी जब मुझसे पूछा जाए कि काम तुम क्यों अंजाम दे रहे हो, तो मेरे पास कोई उसका जवाब ना हो, फकत एक जवाब हो कि मैंने फलां को देखा था ऐसा काम करते हुए, मैं तो जब से पैदा हुआ ऐसा ही करता आया हूँ, बस मैं ये काम कर रहा हूँ। जो भी ये सारे काम जवाब जो इस तरह का जवाब देगा वो धड़के हज़रत इब्राहिम की कौम का जवाब है। वो बुतों की पूजा करे तो उसके रीज़न ये बता रहे थे, हम कुछ और काम कर रहे होंगे, हम उसका भी यही रीज़न बता रहे होंगे। जब बस जो आर्ग्यूमेंट है जो दिया जा रहा है वो अगर एक है, इसका मतलब ये कि हमारा रास्ता जो है वो गलत रास्ता है, हमें जो है वो हक के रास्ते को तलाश करने की ज़रूरत है कि सही मानों में हमें पता हो कि खुदा क्या चाहता है, जो खुदा चाहता है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, चाहे पूरी दुनिया जो है वो आपके अगेंस्ट में बोल रही हो। इमाम खुमैनी रिज़वान अल्लाह अलैह का बहुत मशहूर जुमला है, इमाम खुमैनी कहते हैं कि उनसे पूछा गया कि जो आज एक कौम आपका साथ दे रही है, कल को उनका साथ देना छोड़ दे, क्या आप ये सारे इनकलाब की रेवोल्यूशन की बातें करना छोड़ देंगे। कहा अगर पूरी कौम जो आज जिंदाबाद खुमैनी कह रही है मुर्दाबाद खुमैनी कहना शुरू कर दे, तभी खुमैनी यही बातें करता रहेगा जो आज कह रहा है, खुमैनी के कलमात में जो कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये कब होता है कि जब इंसान अपने आप को खुदा से इस कदर मुतर कर दे और बंदों से अपने आप को आज़ाद कर दे, इन सारी जंजीरों को तोड़ दे, तब जो उस मकाम पे पहुंच सकता है। लेकिन जब तक ये मवद्दतें हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो खुदा के इताअत के ज़ेल के अंदर नहीं है, जो खुदा के हुक्म के अंडर में नहीं है, वो सब के सब जो हमें मासियत खुदा की तरफ मजबूर करती है। यहाँ तक इंसान जो है वो शिर्क की जो जुल्म अजीम है उस तक भी जो है वो पहुँच सकता है, और वो भी जो है वो काम को खुदा न खासा अंजाम दे सकते हैं। इंशाल्लाह इन आयत की तिलावत बाद में करेंगे, मैं वो वक्त नहीं लेना चाहता कि जो किसी और का वक्त है, लेकिन खुलासा ये कि ये जो आयत है ये एक अहम तरीन आयत है कि जिसको जो है वो समझना उसको एक इम्पॉर्टेंट फ़लसफ़ा है कि जो खुदावंद आलम ने उस प्रिंसिपल को बयान करने की कोशिश की है कि जिस पर मुझे और आपको गौर करने की ज़रूरत है, अपनी ज़ात के हवाले से भी। तारीख़ के वाक़ात को फ़कत हिस्ट्री को कहानियाँ पढ़ के हम ना समझें कि फ़कत ठीक है उन लोगों के वो लोग जो है बुतों की पूजा करते थे उन्होंने जवाब दिया, मैं और आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह बुतों की पूजा नहीं करते, लिहाजा हमारे साथ ये मुश्किल नहीं, ये आयत जो है हमारे लिए नाज़िल नहीं हुई। अज़ीज़ाने गिरामी, हम सब जो है वो किसी ना किसी बीमारी किसी ना किसी मुश्किल का शिकार है, और हम सब की दवा जो है वो इसी किताब इलाही के अंदर मौजूद है। आइए इस कुरान को इस तरह से पढ़ना शुरू करें कि हमारे दर्दों की दवा मिलना शुरू हो, हमारे फर्दी और इज्तमाही दर्दों की दवा जो है वो इसी कुरान के अंदर मौजूद है। खुदा से इस दुआ के साथ कि वो कि जिसके उसने तिबयान बनाया उस जिससे उसने शिफा लिमा फिस सुदूर बनाया उसके हकीकी मानों में हमें शिफा हासिल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिलकुरान, अल्लाहुम्मा बय्यिज़ वुजूहना बिलकुरान, अल्लाहुम्मा नव्विर बुयूतना बिलकुरान। एक बार दुरूद भेजें मोहम्मद वाले।